हिंदी सिनेमा में अगर किसी एक शख्स के लिए स्टाइल आइकन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था तो वो थे देवानंद। एक खास अंदाज में बोलना, झुककर लहराते हुए चलना, तंग पतलून, गले में स्कार्फ, सिर पर बैगी कैप और आपकी आंखों में देखती आंखें, ये थे एवरग्रीन देवानंद, 88 साल के नौजवान। एक बार उन्होंने कहा था, मैं मरते दम तक सिनेमा की वजह से ही जवान रहूंगा। वो इसे साबित भी कर गए। मशहूर फिल्म इतिहासकार देवानंद के करीबी और एक जमाने में बीबीसी के लिए काम करने वाले ललित मोहन जोशी याद करते हैं।
मैंने देखा जब वो लंदन आए पहली बार, उनकी फिल्म गैंगस्टर का प्रीमियर था, तो ही रैंग में, बल्कि जब उन्होंने मुझे रिंग किया और मैं था नहीं घर में, तो आंसर मशीन में उनका रिकॉर्ड हो गया था मैसेज। तो जब लौट के आके अपने आंसर मशीन में सुना, तो आई कुडंट बिलीव इट कि उन्होंने बिल्कुल अपने उसी अंदाज में कहा, ललित इट इज देव। तो वो, बल्कि वो जो हमारी रिकॉर्डिंग थी उसको हमने बहुत साल से रखे रहे हम। तो मैंने ये देखा कि देव साहब जो थे वो ही वॉज अ विनर, यू नो, अगर आपके वो क्लोज आ जाए तो यू कुड नॉट बिलीव कि एक इंसान जो इतना बड़ा है, जिसको इतनी सफलता मिल चुकी है, वो इतना इंसान कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसे थे, जो भी उनके करीब था वो हर इंसान को ये फीलिंग देते थे कि वो उसके बहुत करीब हैं।
1923 में गुरदासपुर में जन्मे देवानंद 1943 में अशोक कुमार से प्रभावित होकर अभिनेता बनने मुंबई आए थे। अपने बारे में बात करते हुए एक बार देवानंद ने बीबीसी को बताया था,
मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अंग्रेजी में बीए ऑनर्स किया था और मैं एमए मास्टर्स डिग्री करना चाह रहा, लिटरेचर करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी उस वक्त, उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, बेटा बैंक बैंक में नौकरी कर लो, मैं कैसा नहीं होगा। तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट लेके फ्रंटियर रेल में टिकट पकड़ा और लैंड कर दिया बॉम्बे में। और दो साल का स्ट्रगल, 43 to 45 में मुझे टिकट मिला डेक्कन ग्रीन की फर्स्ट क्लास पूना में। वहाँ के स्टेशन वैगन स्टेशन पे आई मुझे लेने के लिए, जाके मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला पिक्चर का नाम हम एक हैं। मैं बिल्कुल ही नया था, उस जमाने में कोई अकेडमीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस थी, कॉलेज की पढ़ाई थी, बहुत उम्दा कॉलेज था, बहुत अच्छा बोलता था, प्रेजेंट अच्छा करता था, लोग बड़े खुश होते थे, हंसता था, लोग पागल हो जाते थे। तो जब मुझे ब्रेक मिला तो फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा है।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
फिल्म जगत में देवानंद के सबसे शुरुआती और नजदीकी दोस्त थे गुरुदत्त। उनसे उनकी पहली मुलाकात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हुई थी। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं,
हमारे कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज मेरे यहाँ और मेरी कमीज उनके यहाँ पहुंचा दी। मजे की बात यह है कि हम दोनों ने वो कमीजें एक ही दिन पहन ली। जब मैं प्रभात स्टूडियो में घुसा तो उनकी नज़र मेरी कमीज़ पर पड़ी। उन्होंने उसे गौर से देखा और पूछा, ये कमीज़ आपने कहाँ से खरीदी? जब मैंने उनकी तरफ नज़र उठाई तो मैंने देखा कि वो मेरी कमीज़ पहने हुए थे। हम दोनों को बात समझ में आ गई और हमने ज़ोर का ठहाका लगाते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। हम जिगरी दोस्त बन गए थे। एक दिन बियर का गिलास लड़ाते हुए उन्होंने वादा किया, देव अगर मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले हीरो हो गए। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया, अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर आप ही होंगे।
देवानंद को अपना ये वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी।
उनकी पहली फिल्म आप देखिए, विच बिकेम अ बिग सक्सेस, वाज बाजी। अगर आपने बाजी देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा, उसमें आप देखिए कैसे लोग को लाए पहली बार। पहले तो उसमें गुरुदत्त को उन्होंने चांस दिया, गुरुदत्त का पहला डायरेक्शन था और बलराज साहनी ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। साहेब लुधियानवी पहली बार एज ए मेजर फिल्म उसमें वो आए थे, एस डी बर्मन आए, जोरा सहगल आई डांस के लिए और डायरेक्ट गुरदत्त ने की. तो ही हैड अ विजन, ही कुड इमेजिन हाउ ही कैन मेक अ बिग फिल्म. ऑब्वियसली वो उसके मध्य में तो वो खुद रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्टार हैं.
तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले. तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर.
देवानंद और सुरैया का इश्क बॉलीवुड की सबसे शानदार प्रेम कहानियों में से एक है.
आई थिंक वी हिट ऑन द वेरी फर्स्ट डे. मैं बिल्कुल नया था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी, कैडिलैक थी, लिंकन थी, और मैं पैदल जाता था. तो अचानक सेट में आई और मुझे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो हमारी दोस्ती बन गई. आई थिंक आई वॉज वेरी प्रेजेंटेबल. आई हैड ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग. आई हैड नो मनी, आई हैव स्टार्वड, I've lived in chores, but I was happy, I was smiling, I was young, I was prepared to struggle. तो मैं कुछ चीज भागी उनको, हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई.
अपनी आत्मकथा में देवानंद झलक देते हैं कि किस तरह सुरैया से फ्लर्ट करते करते उनकी नजदीकी चाहत में बदल गई.
सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम में कुछ. सुरैया बोली, बताओ ना. मैंने कहा, तुम्हारी नाक खूबसूरत तो है लेकिन थोड़ी लंबी है. सुरैया ने अपनी नाक छुई और कहा, आप सही कहते हैं. मैंने कहा, मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हारा कोई नाम रखूं. मैं अपने साथ काम करने वाली हर लड़की का नाम रखता हूं. सुरैया ने पूछा, आप मेरा क्या नाम रखना चाहते हैं? मैंने शब्द को लंबा करते हुए जवाब दिया, नोजी. और ये कहते कहते मैंने उसकी नाक का टिप छू लिया. अगले दिन एक आउटडोर शूटिंग के दौरान सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? मैंने कहा, किससे? सुरैया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ग्रेगरी पैक से. मैंने कहा, छोड़ो भी, हर कोई ऐसा ही कहता है, मुझे उससे तुलना पसंद नहीं है. सुरैया बोली, लेकिन क्यों नहीं, देखने में वो इतना अच्छा लगता है. मैंने छूटते ही कहा, मैं ग्रेगरी पैक से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ. सुरैया खिलखिलाई और बोली, मुझे तुम्हारा यही आत्मविश्वास पसंद है.
ये अलग बात है कि सुरैया की नानी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और देवानंद को सुरैया से अलग हो जाना पड़ा. देवानंद के करियर का पीक था गाइड फिल्म. आर के नारायण के उपन्यास पर बनाई गई इस फिल्म को पूरी दुनिया में क्रिटिकल अक्लेम मिला और उसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से भेजा गया.
गाइड न केवल देवानंद की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, वो विजय आनंद बतौर निर्देशक के सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और मुझे लगता है कि 60 के दशक की वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है. गाइड का जो निर्माण था वो भी इस तरह के झंझावातों से गुजरा. गाइड एक बेसिकली एक विचार था जो कि देवानंद के मन में आया और वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि अंतरराष्ट्रीय हो. जिस तरह से वो फिल्म बनी, ये तो आपको पता ही होगा कि वो फिल्म मूलतः तो एक अंग्रेजी फिल्म थी जो पर्लस बक के पास जाके उन्होंने उसका आइडिया डेवलप किया और टेड डैनिलेस्की ने उसको अंग्रेजी गाइड को उन्होंने डायरेक्ट किया. उसका किस्सा ये था कि ये बात मुझे विजय आनंद साहब ने बताई थी एक बहुत लंबे इंटरव्यू में और वो बहुत उसमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी था देव साहब के और विजय आनंद के बीच में. देव साहब ने गाइड में बेतहाशा पैसा खर्चा किया, अंग्रेजी गाइड में. देव साहब ने विजय आनंद से कहा कि हम लोग अंग्रेजी का शॉट लेंगे, उसके बाद उसी को आप हिंदी का शॉट लीजिए. और वहीदा रहमान जी को लेकर, पहली बात तो वहीदा रहमान जी को लेने के बारे में डिफरेंसेस ओपिनियन थे. जब ये बात तय हो गई, क्योंकि टेड डैनिलेस्की नहीं चाहते थे कि वहीदा रहमान को बोले, लेकिन जब ये फिल्म बनने लगी तो विजय आनंद इस बात से बहुत नाराज हुए. उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं फिल्म नहीं बना सकता, मैं कोई अनुवादक की तरह किसी फिल्म का निर्माण नहीं कर सकता. तो उन दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, पर विजय आनंद ने कहा, अगर मैं गाइड बनाऊंगा तो मैं अपने तरह से उसको बनाऊंगा. तो उन्होंने उसकी कहानी के साथ भी स्वतंत्रता ली और उन्होंने किस तरह से उसको विजुलाइज किया उसके साथ भी उन्होंने पूरी आजादी ली. और गाइड जब बनी तो सभी लोगों ने गाइड देखी है कि वो कितना रिवोल्यूशनरी कहानी है. और वहीदा रहमान के लिए वो एक एक, एक फाइटिंग, वो हमेशा इस बात को कहती हैं कि इससे बढ़िया उनकी कोई फिल्म नहीं है. तो दोनों में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था विजय आनंद में और देवानंद में, वो भी गाइड को लेके अपने चरम पर पहुंचा और पर बाद में जब गाइड बनी, यहाँ तक कि आर के नारायण उसके फिल्मांकन को लेकर नाराज थे, पर विजयानंद साहब ने बताया जब वो फिल्म के प्रीमियर के पहले उन्होंने उनको दिखाई पर्सनली, तो वो बहुत ही गदगद हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी कहानी को बदला तो है, पर ये एक अपने आप में एक कृति है।
दिन डल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए।
वहीदा रहमान ने अपनी पहली फिल्म सीआईडी में देवानंद के साथ काम किया था। दोनों ने कुल 7 फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान याद करती हैं।
उन्होंने कहा नहीं वहीदा, तुम मुझे सिर्फ देव कहोगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, इतने बड़े स्टार हैं। तो बोले मैं अपनी लीडिंग लेडीज के साथ काम नहीं कर सकता जब वो मुझे साहब, मिस्टर आनंद ऐसे कहें। मगर चूंकि आदत थी हमारी, जब भी मैं सेट पर जाती थी गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद, तो इधर उधर देखते थे कौन है वो। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो देव हूँ। तो फिर आदत पड़ गई मुझे कि उनको मैं सिर्फ देव कहूँ।
देवानंद ने भारतीय फिल्म उद्योग को बेमिसाल टैलेंट्स दिए। शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, ताबू और जीना तमान, सबको देवानंद ने ही इंट्रोड्यूस किया।
उनके अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट करने के, प्रयोग करने का जो एक मादा था और लीक से अलग हट के चलने का जो मादा था, वो इसके लिए जिम्मेदार था कि वो टीना मुनीम आप कहें या आप जीनत अमान कहें या जैकी श्रॉफ कहें, जितने भी नए कलाकारों को लेगा, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को भी वो लेकर आए, ये उनका एक अपना विजन था जो कि वो किसी प्रोड्यूसर से, एक फिल्मकार से अलग हट करके सोचते थे। जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा पर वो ड्रग्स पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसके लिए देव साहब कभी इंग्लैंड आते थे, कभी नेपाल जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, और उनमें एक ये क्यूरियोसिटी थी कि वो अपना टाइम बहुत जाया करते थे। ऐसा लगता था घंटों बात करने के दौरान वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी उनमें थी। तो जब पहली बार उन्होंने बताया कि जीनत को उन्होंने किसी पार्टी में देखा और वो सिगरेट पी रही थी, और जब देव साहब ने जाके उसको हेलो कहा तो उसने उनको हेलो बोला और सिगरेट ऑफर की। देव साहब ने कहा कि जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा कि मेरी ये फिल्म है, ये लड़की मेरी फिल्म है। इस तरह से उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा को विजुलाइज किया।
১৯৪৭ के बाद हिंदी फिल्मों पर 3 अभिनेता छाए रहे। बड़े दिल का छोटा आदमी राज कपूर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, पर रोमांस और लोगों के दिलों पर राज करने के लिए सिर्फ एक ही नाम ऊपर आया, देवानंद। दिलचस्प बात यह है कि एक बार इन तीनों को एक साथ मिलने के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने यहां बुलाया। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं,
जब हम उनकी स्टडी में पहुंचे तो नेहरू ने हम तीनों को गले लगाया। वो बीमार चल रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मूड में आ गए। राज कपूर ने इसका फायदा उठाते हुए सवाल दागा, पंडित जी हमने सुना है कि आप जहां भी जाते थे औरतें आपके पीछे भागा करती थीं। नेहरू ने अपनी मशहूर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं इतना लोकप्रिय नहीं था जितना तुम लोग हो। मैंने भी पूछ ही डाला, आपकी गजब की मुस्कान ने लेडी माउंटबेटन का दिल जीत लिया था, क्या ये सही बात है? नेहरू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का आनंद उठाया और हंसते हुए कहा, अपने बारे में कही गई इन कहानियों को सुनकर मुझे मजा आता है। बीच में दिलीप बोले, लेकिन लोग कहते हैं कि लेडी माउंटबेटन ने खुद स्वीकार किया था कि आप उनकी कमजोरी थे। नेहरू ने ठहाका लगाते हुए कहा, लोग चाहते हैं कि मैं इन कहानियों पर यकीन कर लूं।
देवानंद ने हमेशा अपनी जिंदगी को आनंद के रूप में लिया। उनके भीतर की जिंदा दिली ने उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने दिया।
दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद, ये तीनों अपने आप में एक अलग अलग शख्सियत थी। तो दिलीप कुमार तो जाहिर है उनके अभिनय में बड़ी गंभीरता थी, बड़ी गहराई थी, एक समय में एक ही फिल्म में काम करते थे। जो राज कपूर थे, राज कपूर तो वाज अ बिग स्टार एंड मैन हु मेड फिल्म्स, जिन्होंने पहली बार भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय एक स्तर दिया। पर घर घर में जो इंसान पॉपुलर हुआ वो देवानंद था। देवानंद का जो पूरी शख्सियत थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी, वो मिडिल क्लास इंडियन की आइडेंटिटी थी। अब आप ये सोचिए कि मेरी जो बुआ थी जहां मैं रह के पढ़ा लखनऊ में, वो मेरी माँ के बराबर थी। उन्होंने मुझे ये एडमिट किया था कि उन्होंने देवानंद को फैंसी किया था। हमारे उम्र के बच्चे थे, उन्होंने भी देवानंद को फैंसी किया और उसके बाद के लोगों ने भी उनको फैंसी किया। तो एक जो तादाद में देवानंद का था, वो तादाद में मैं नहीं समझता दिलीप कुमार का था या राज कपूर का था। ये दोनों अपने आप में महान कलाकार थे, पर देवानंद की जो एक आइडेंटिफिकेशन था वो एक आम आदमी से था, और इसीलिए एक पागलपन की हद तक लोग उनको पसंद करते थे, और खासतौर से जो फेयर सेक्स है। और दूसरा एक और बात भी थी कि जो उनकी थीम्स थी वो बड़ी अर्बन थीम्स थी। काला बाजार जैसे ब्लैक मार्केटिंग पे थी, तेरे मेरे सपने अगर आप देखें तो डॉक्टरी के पेशे पे थी कि डॉक्टर्स लोग गाँव में क्यों नहीं जाना चाहते। आप देखें एक आइडिया लेके वो हमेशा चले, तो उनका जो आइडिया था और उनको जो छवि थी वो मिलजुल करके उनका ऑरा क्रिएट किया, जो कि 25 साल 30 साल 40 साल तो बिल्कुल छाया रहा लोगों के दिमाग
में। खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है शोपियों में।
रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।